इस दोनों तरह के दोषों डिमेरिट्स को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च में प्रयोगशाला प्रेक्षण लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। प्रयोगशाला प्रेक्षण वैसे प्रेक्षण को कहा जाता है जिसमें प्रेक्षक घटनाओं का निरीक्षण एक नियंत्रित अवस्था में करता है। नियंत्रित अवस्था के होने से प्रेक्षक परिस्थिति पर आवश्यक नियंत्रण कर पाता है तथा साथ ही साथ अपने अध्ययन की समस्या के अनुकूल परिस्थिति भी उत्पन्न कर लेता है। उदाहरणार्थ यदि कोई प्रेक्षक बच्चों में नेतृत्व गुणों लीडरशिप ट्रेट्स का अध्ययन प्रयोगशाला प्रेक्षण द्वारा करना चाहता है तो वह बच्चों के छोटे समूह को किसी प्रयोगशाला परिस्थिति में रखकर उसे किसी समस्या का समाधान करने के लिए कहेगा और प्रेक्षक बच्चों के व्यवहारों का प्रेक्षण कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा। छात्र यह ध्यान देंगे कि प्रयोगशाला प्रेक्षण लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन प्रयोगशाला प्रयोग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से भिन्न है क्योंकि प्रयोगशाला प्रयोग में प्रेक्षक द्वारा चरों का जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन किया जाता है जबकि प्रयोगशाला प्रेक्षण लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में प्रेक्षक चरों में बिना जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन किए ही घटनाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन करता है। बी सहसंबंधात्मक शोध कोरिलेशनल रिसर्च मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोध साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च में सहसंबंधात्मक शोध का काफ़ी महत्व है क्योंकि इस तरह के शोध का प्रचलन मनोविज्ञान तथा शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में है। सहसंबंधात्मक शोध कोरिलेशन रिसर्च के प्रधान समर्थक क्रॉनबैक 1957 तथा गिलफोर्ड 1966 हैं। इन लोगों के अनुसार सहसंबंधात्मक शोध कोरिलेशनल रिसर्च वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों वेरिएबल्स में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन सीधे न करके चयन सिलेक्शन प्रक्रिया द्वारा करता है तथा फिर वह एक स्वाभाविक परिस्थिति नेचुरल सिचुएशन में अध्ययन करता है कि कहां तक एक चर वेरिएबल में किया गया जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन दूसरे चर में जोड़ तोड़ से संबंधित है। उदाहरणार्थ मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता रिसर्चर बच्चों में समस्या समाधान क्षमता प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तथा बुद्धि इंटेलिजेंस के बीच के संबंध रिलेशनशिप का अध्ययन करना चाहता है। इस समस्या में दो चर हैं एक बुद्धि इंटेलिजेंस तथा दूसरी समस्या समाधान क्षमता। प्रेक्षक किसी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कर भिन्न भिन्न बुद्धि स्तरों के व्यक्तियों का चयन सिलेक्शन करेगा। बुद्धि में इस ढंग का जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस द्वारा किया गया जोड़ तोड़ का उदाहरण होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रेक्षक कुछ बच्चों की बुद्धि स्तर को अधिक कर दे तथा कुछ बच्चों की बुद्धि स्तर को कम कर दे। यदि ऐसा होता तो इस तरह सीधे डायरेक्टली किए गए जोड़ तोड़ को प्रयोगात्मक जोड़ तोड़ एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन कहा जाता है। फिर इन व्यक्तियों की समस्या समाधान क्षमता की वह माप करेगा। उसके बाद इन दोनों चरों से प्राप्त आंकड़ों डेटा के आधार पर वह सहसंबंध कोरिलेशन ज्ञात करेगा। यदि वह इन दोनों चरों के बीच धनात्मक सहसंबंध पॉजिटिव कोरिलेशन पाता है तो अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जैसे जैसे बच्चों की बुद्धि स्तर में वृद्धि होती है उनकी समस्या समाधान क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। वैसा चर जिसमें चयन सिलेक्शन द्वारा जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन किया जाता है उसे टाइप एस स्वतंत्र चर टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरण में बुद्धि एक टाइप एस स्वतंत्र चर का उदाहरण है तथा समस्या समाधान क्षमता प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल का उदाहरण है। मनोविज्ञान में सहसंबंध शोध का प्रयोग ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट के निर्माण कंस्ट्रक्शन तथा उपयोग एप्लीकेशन में विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी तथा पशु मनोविज्ञान एनिमल साइकोलॉजी में अधिक किया जाता है। सहसंबंधात्मक शोध कोरिलेशनल रिसर्च के दो परिसीमाएं लिमिटेशंस या दोष बतलाए गए हैं। पहला दोष यह बतलाया गया है कि इस तरह के शोध में कुछ ऐसे चरों का नियंत्रण करना संभव नहीं हो पाता है जिनसे अध्ययन का विषय प्रभावित हो सकता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण के अध्ययन में शामिल किए गए सभी बच्चों की उम्र यदि एक समान नहीं हुई तो संभव है कि बच्चों की बुद्धि स्तर तथा समस्या समाधान क्षमता के बीच स्पष्ट संबंध पर पहुँचा नहीं जा सकता। अतः इस अध्ययन में उम्र एक ऐसा चर है जिसे नियंत्रित कंट्रोल करना आवश्यक है। प्रायः यह देखा गया है कि शोधकर्ता अपने अध्ययन में ऐसे चर का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं जिससे उनके परिणाम बहुत विश्वसनीय रिलायबल नहीं रह जाते। उपयुक्त उदाहरण में संभव है कि शोधकर्ता बच्चों की उम्र पर बिना ध्यान दिए ही उन सभी बच्चों को अपने अध्ययन में शामिल कर ले जो सुविधापूर्वक अध्ययन के लिए उपलब्ध हों। सहसंबंधात्मक शोध कोरिलेशनल रिसर्च का दूसरा प्रमुख दोष यह है कि ऐसे शोध के आधार पर चरों वेरिएबल्स में कारण तथा परिणाम कॉज एंड इफेक्ट संबंध का पता नहीं चल पाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे शोध के आधार पर यह नहीं पता चलता है कि प्राप्त परिणाम रिजल्ट का कारण क्या है, जैसे बच्चों की बुद्धि स्तर में परिवर्तन का कारण क्या है। इसका वास्तविक पता शोधकर्ता को निश्चित रूप से नहीं हो पाता है। सी प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता अध्ययन किए गए जाने वाले चर में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन चयन सिलेक्शन द्वारा न करके सीधे डायरेक्टली या प्रयोगात्मक रूप से एक्सपेरिमेंटली करता है तथा उस जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन का पड़ने वाला प्रभाव दूसरे चर वेरिएबल पर देखता है। जिस चर वेरिएबल में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन सीधे किया जाता है उसे टाइप ई स्वतंत्र चर टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। प्रयोगात्मक शोध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि एक प्रयोगशाला लेबोरेटरी हो ही। सच्चाई यह है कि इस तरह का शोध प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है या क्षेत्र फील्ड में भी किया जा सकता है। जब इस तरह का शोध प्रयोगशाला लेबोरेटरी में किया जाता है तो इसे प्रयोगशाला प्रयोग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है तथा जब इस तरह का शोध क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्षेत्र प्रयोग फील्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक उदाहरण इस प्रकार है। मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता रिसर्चर यह देखना चाहता है कि पुरस्कार रिवॉर्ड का प्रभाव बच्चों की सीखने की प्रक्रिया पर क्या पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वह समान उम्र एवं बुद्धि के बच्चों के दो समूह लेगा तथा दोनों समूहों में एक ही तरह का कार्य सीखने के लिए दिया जाएगा। एक समूह में पाठ को जल्द सीख लेने पर 100 रुपये का पुरस्कार का वादा शोधकर्ता कर सकता है या कोई अन्य तरह के पुरस्कार देने का भी वादा कर सकता है तथा दूसरे समूह में पाठ को मात्र यथाशीघ्र सीख लेने की घोषणा कर सकता है। यदि पहला समूह दूसरे समूह की अपेक्षा पाठ को बिना त्रुटि किए ही कम समय में सीख लेता है तो शोधक पूर्ण विश्वास के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। उदाहरण में पुरस्कार एक टाइप ई स्वतंत्र चर टाइप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उदाहरण है। सीखना एक आश्रित चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उदाहरण है। किसी भी प्रयोगात्मक शोध में एक या एक से अधिक टाइप ई स्वतंत्र चर हो सकते हैं तथा एक से अधिक आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रयोग प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी तथा व्यावसायिक मनोविज्ञान इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा तुलनात्मक से अधिक होता है। प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कुछ गुण एडवांटेजेस भी हैं, निम्नलिखित हैं। एक, इस तरह के शोध में चूंकि स्वतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन सीधे डायरेक्टली या प्रयोगात्मक रूप से एक्सपेरिमेंटली होता है अतः इस परिणाम रिजल्ट अधिक विश्वसनीय होते हैं। दो, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच स्पष्ट कारण तथा परिणाम संबंध कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित हो पाते हैं जिससे प्रयोग के परिणाम तथा निष्कर्ष में अस्पष्टता वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी अधिक होती है। प्रयोगात्मक शोध की कुछ परिसीमाएं लिमिटेशंस भी हैं जो निम्नलिखित हैं। एक, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रयोग हर परिस्थिति में संभव संभव नहीं हो पाता है। उदाहरणार्थ यदि प्रयोगात्मक शोध का विषय टॉपिक कुछ ऐसा है जिससे प्रयोज सब्जेक्ट्स पर बुरा असर हो सकता है, क्योंकि प्रयोग में प्रयोज्य के शरीर में कुछ चीरफाड़ ऑपरेशन किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह का शोध किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी मानव प्रयोज्य ह्यूमन सब्जेक्ट इसके लिए तैयार नहीं होगा। पैराग्राफ चेंज। दो, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, चाहे प्रयोगशाला लेबोरेटरी में किया जाए या क्षेत्र में इसकी परिस्थिति कुछ इतनी अस्वाभाविक या कृत्रिम आर्टिफिशियल होता है कि उससे प्राप्त परिणाम या सामान्यीकरण जनरलाइजेशन समाज के अधिकतर व्यक्तियों के लिए विश्वास के साथ नहीं किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। इन प्रमुख परिसीमाओं के बावजूद भी मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक शोध की बारंबारता फ्रिक्वेंसी अन्य तरह के शोधों की बारंबारता से अधिक है। शैक्षिक शोध के प्रकार टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। हालांकि शैक्षिक शोध को वर्गीकृत करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि भिन्न भिन्न पाठ्य पुस्तकों टेक्स्ट बुक्स में कई वर्गीकरण अलग अलग ढंग से प्रस्तावित किए गए हैं। फिर भी बेस्ट कहन 1992 द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण को सबसे उत्तम माना जाता है, और इसे वर्गीकरण की एक कसौटी मानते हुए शैक्षिक शोध को निम्नांकित तीन प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। एक, ऐतिहासिक शोध हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक शोध से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसमें बीती घटनाओं का रिकॉर्ड किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है तथा उसकी व्याख्या की जाती है, ताकि उनसे एक दुरुस्त सामान्यीकरण साउंड जनरलाइजेशन किया जा सके। इसे सामान्यीकरण से गत पास्ट एवं वर्तमान प्रेजेंट की क्रियाओं को तो समझने में मदद मिलती ही है, साथ ही साथ इनसे प्रत्याशित भविष्य एंटिसिपेटेड फ्यूचर को भी समझने में मदद मिलती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक शोध हिस्टोरिकल रिसर्च मूलतः क्या था, वो व्हाट वाज का वर्णन करता है। पैराग्राफ चेंज। दो, विवरणात्मक शोध डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। विवरणात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें वर्तमान हालातों को रिकॉर्ड किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है तथा उसकी व्याख्या की जाती है। ऐसे शोध में अपरिचालित चरों नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स के बीच मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसे अप्रयोगात्मक या सहसंबंधात्मक शोध नॉन एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल रिसर्च भी कहते हैं। ऐसे शोध में मूल रूप से क्या है, व्हाट इज का वर्णन करता है। पैराग्राफ चेंज। तीन, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों वेरिएबल्स को नियंत्रित किया जाता है, कुछ चरों को परिचालित मैनिपुलेट किया जाता है एवं दूसरे चर पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अतः ऐसे शोधों में मूलतः इस बात का अध्ययन किया जाता है कि चरों को नियंत्रित करने एवं उसका परिचालन करने का प्रभाव क्या होगा। पैराग्राफ चेंज। सहसंबंधात्मक शोध तथा प्रयोगात्मक शोध का तुलनात्मक अध्ययन, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सहसंबंधात्मक शोध, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, एक ऐसा शोध रिसर्च है जिसमें शोधकर्ता रिसर्चर किसी स्वाभाविक परिस्थिति नेचुरल सेटिंग में स्वतंत्र चर में चयन सिलेक्शन द्वारा जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन कर उसका संबंध आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ स्थापित करता है। प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में शोधकर्ता स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन चयन द्वारा न करके सीधे डायरेक्टली या प्रयोगात्मक रूप से एक्सपेरिमेंटली करता है, तथा फिर आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर इन दोनों में कारण तथा परिणाम संबंध कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कायम करता है। इन दोनों तरह के शोधों रिसर्चेस में समानताएं सिमिलैरिटीज तथा विषमताएं डिससिमिलैरिटीज है। प्रमुख समानताएं सिमिलैरिटीज निम्नांकित है। पैराग्राफ चेंज। एक, सहसंबंधात्मक शोध कोरिलेशनल रिसर्च तथा प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दोनों ही आनुभाविक शोध इंपेरिकल रिसर्च हैं। दो, संबंधात्मक शोध कोरिलेशनल रिसर्च तथा प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दोनों में ही स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। पैराग्राफ चेंज। इन समानताओं के बावजूद भी इन दोनों तरह के शोधों में निम्नांकित असमानताएं डिससिमिलैरिटीज हैं। पैराग्राफ चेंज एक, सहसंबंधात्मक शोध कोरिलेशनल रिसर्च तथा प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्रमुख अंतर यह है कि सहसंबंधात्मक शोध कोरिलेशनल रिसर्च में स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ या परिचालन चयन सिलेक्शन द्वारा किया जाता है, जबकि प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्वतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन प्रयोगात्मक रूप से एक्सपेरिमेंटली अर्थात सीधे डायरेक्टली किया जाता है। पैराग्राफ चेंज दो, सहसंबंधात्मक शोध कोरिलेशनल रिसर्च में स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कारण तथा प्रभाव संबंध कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्थापित नहीं किया जा सकता, जबकि प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच कारण तथा प्रभाव संबंध कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विकास के साथ शोधकर्ता स्थापित कर पाता है। पैराग्राफ चेंज, इस तरह से हम देखते हैं कि सहसंबंधात्मक शोध कोरिलेशनल रिसर्च तथा प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कुछ समानता होते हुए भी विभिन्नताएं हैं। मूल शोध तथा प्रयुक्त शोध प्योर और फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। शोधकर्ता रिसर्चर के उद्देश्य पर्पस के अनुसार मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च को दो भागों में बांटा गया है, मूल शोध प्योर और फंडामेंटल रिसर्च तथा प्रयुक्त शोध अप्लाइड रिसर्च। मूल शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र में एक सिद्धांत थियरी विकसित करना होता है। इस तरह के शोध में वह कुछ व्यक्तियों का चयन सिलेक्शन निष्पक्ष भाव से करता है तथा उसके व्यवहारों का अध्ययन कर एक निश्चित सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करता है। मूल शोध में शोधकर्ता को इस बात की चिंता नहीं होती है कि उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष से किसी क्षेत्र की व्यवहारिक समस्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के समाधान में मदद मिलेगी या नहीं। जैसे जब कोई शोधकर्ता कुछ चुने हुए व्यक्तियों को प्रत्यक्षण परसेप्शन के स्वरूप पर शोध करके इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रत्यक्षण की प्रक्रिया व्यक्ति की आवश्यकता नीड मूल्यों वैल्यूज तथा मनोवृत्तियों द्वारा प्रभावित होती है, तो यह एक मूल शोध फंडामेंटल रिसर्च का उदाहरण होगा। शोधकर्ता इस तरह के निष्कर्ष के आधार पर एक सामान्य नियम प्रिंसिपल पर पहुंचेगा कि प्रत्यक्षण में व्यक्तित्व कारकों पर्सनैलिटी फैक्टर का महत्व होता है। अब इस सामान्य नियम द्वारा प्रत्यक्षण के क्षेत्र के किन किन समस्याओं का समाधान होता है या हो सकता है, इससे एक मूल शोधकर्ता प्योर रिसर्च को कोई मतलब नहीं रहता है। पूर्णविराम पैराग्राफ चेंज, प्रयुक्त शोध अप्लाइड रिसर्च में मूल शोध फंडामेंटल रिसर्च के कुछ गुण पाए जाते हैं। जैसे इस शोध में भी शोधकर्ता एक प्रतिदर्श सैंपल का चयन करता है, अर्थात शोध के लिए व्यक्तियों का निष्पक्ष चयन करता है तथा अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर लक्ष्य जीवन संख्या टारगेट पॉपुलेशन के बारे में विशेष अनुमान इन्फ्रेंस लगाता है। इस समानता के बावजूद प्रयुक्त शोध में शोधकर्ता का एक विशेष उद्देश्य पर्पस होता है जो उसके शोध को मूल शोध फंडामेंटल रिसर्च से अलग करता है। दूसरे शोध में शोधकर्ता प्रयुक्त शोध में सैद्धांतिक संप्रत्ययों थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की जांच वास्तविक समस्या समाधान में करता है। वह इस बात पर विशेष बल डालता है कि उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष संबंधित क्षेत्र की वास्तविक समस्या का समाधान किस हद तक कर पाता है। अधिकतर शैक्षिक शोध एजुकेशनल रिसर्च तथा समाज मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी एवं व्यवसायिक मनोविज्ञान इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के क्षेत्र में किए गए शोध प्रयुक्त शोध अप्लाइड रिसर्च की श्रेणी के हैं। मनोवैज्ञानिक शोध की अवस्थाएँ स्टेजेस और फेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च एक तरह का वैज्ञानिक शोध साइंटिफिक रिसर्च है। जिस तरह से वैज्ञानिक शोध के एक निश्चित क्रम सीक्वेंस तथा अवस्थाएं होती हैं, ठीक उसी तरह से मनोवैज्ञानिक शोध एक खास क्रम सीक्वेंस में कुछ निश्चित आवश्यकताओं से होकर गुजरता है। रॉबिन्सन 1996 के अनुसार किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च में निम्नांकित प्रमुख छह अवस्थाएं स्टेजेस होती हैं। पैराग्राफ चेंज। एक, किसी शोध विषय का चयन, सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक। मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च तथा शैक्षिक शोध एजुकेशनल रिसर्च की शुरुआत शोध विषय के चयन सिलेक्शन से होती है। अतः किसी शोध विषय का चयन सिलेक्शन मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक शोध की सबसे पहली अवस्था है। शोध विषय रिसर्च टॉपिक से तात्पर्य शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम से होता है। शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम से तात्पर्य एक ऐसे प्रश्नवाचक कथन इंटरोगेटिव स्टेटमेंट से है जिसमें चरों वेरिएबल्स के बीच कोई विशेष प्रकार के संबंध रिलेशनशिप होने की कल्पना की जाती है। कर्लिंग 1986 के शब्दों में अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा, समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य एवं कथन होता है जिसके द्वारा यह पूछा जाता है डैश दो या दो से अधिक चरों के बीच किस ढंग का संबंध होता है। पूर्णविराम डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पैराग्राफ चेंज। शोधकर्ता के लिए शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम का निर्धारण करना सामान्यतः एक कठिन कार्य होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वह उन स्रोतों सोर्सेस की ओर झांकता है जिस पर एक वैज्ञानिक समस्या साइंटिफिक प्रॉब्लम की उत्पत्ति हो सके। इन स्रोतों के रूप में शोधकर्ता शोध जर्नल रिसर्च जर्नल्स मनोवैज्ञानिक एब्स्ट्रैक्ट्स साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स में छपे शोध पत्र को पढ़ता है तथा उससे एक अच्छी समस्या की खोज करता है। इस खोज में वह प्रोफेसर एवं विषय के अन्य विशेषज्ञों से भी राय लेता है। एक अच्छी समस्या की खोज का काम दो चरणों में पूरा किया जाता है। पहले चरण फर्स्ट स्टेप में शोधकर्ता इस बात का निश्चय करता है कि उसका शोध रिसर्च का सामान्य उद्देश्य जनरल इंटेंट क्या है तथा दूसरे चरण में शोधकर्ता उस विशेष उद्देश्य स्पेसिफिक इंटेंट को परिभाषित करता है जिसका विश्लेषण किया जाना है। उदाहरणार्थ मान लिया जाए कि शोधकर्ता समस्या समाधान व्यवहार प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर के क्षेत्र में अध्ययन करना चाहता है। ऐसी अवस्था में वह मनोवैज्ञानिक एब्स्ट्रैक्ट्स साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स में छपे उन शोध अनुसंधानों रिसर्च इन्वेस्टिगेशन समीक्षा रिव्यू करेगा जो समस्या समाधान व्यवहार प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर के क्षेत्र हैं कि इस क्षेत्र में अब तक बहुत ही कम शोध रिसर्च किए गए हैं। इस सिलसिले में वह की विशेषज्ञ एवं प्रोफेसर से बातचीत भी कर सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि मनोवैज्ञानिक एब्स्ट्रैक्ट एवं विशेषज्ञ से बातचीत कर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समस्या समाधान व्यवहार प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में अभिप्रेरणात्मक कारणों के महत्व का अध्ययन किया जाए। अतः शोधकर्ता अपने शोध की समस्या का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में इस तरह करेगा, व्यक्तियों द्वारा किसी समस्या समाधान में अभिप्रेरणात्मक कारकों के महत्व का निर्धारण करना, टू डिटरमाइन द रोल ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर बाय द सब्जेक्ट्स। ब्रैकेट क्लोज। पैराग्राफ चेंज। समस्या का निर्धारण कर लेने पर शोध अध्ययन रिसर्च स्टडी का विशेष उद्देश्य स्पेसिफिक पर्पस भी निश्चित कर लिया जाता है ताकि शोधकर्ता यह तय कर पाए कि उस समस्या का विश्लेषण एनालिसिस कैसे किया जाएगा। ऐसे करने के लिए वह प्राकल्पना हाइपोथेसिस बनाता है। अतः शोधकर्ता यहाँ इस समस्या का प्राकल्पना हाइपोथेसिस विकसित कर सकता है। समस्या समाधान व्यवहार प्रशंसा द्वारा मजबूत है परंतु निंदा द्वारा कमजोर है। डबल इंटर कॉमा क्लोज। अंडर ब्रैकेट। प्रेज एक्सेलरेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर वेयर एज रिप्रूफ रिटार्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ब्रैकेट क्लोज। दो, चरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ वेरिएबल्स। प्राकल्पना हाइपोथेसिस के स्पष्टीकरण कर लेने के बाद शोध के दूसरे चरण में शोधकर्ता उन चरों वेरिएबल्स पर ध्यान देता है तथा उनका वर्गीकरण करता है जो उसके शोध अध्ययन में सम्मिलित हैं। सबसे पहले वह स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आईवी का पता लगाता है, क्योंकि उसी चर के प्रभाव के अध्ययन में शोधकर्ता की रुचि होती है। उपयुक्त उदाहरण में प्रशंसा, प्रेज, प्रशंसा तथा निंदा, रिप्रूफ, दो आईवी हैं। इसके बाद यह निश्चित किया जाता है कि वह कौन सा चर है जिसका मापन आईवी के प्रभाव देखने के लिए वह करेगा। दूसरे शब्दों में वह कौन सा वेरिएबल है जिसके बारे में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट या शोध करके वह पूर्व कथन प्रिडिक्शन करना चाहता है। ऐसे चर को आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल या डीवी कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरण में समस्या समाधान व्यवहार डीवी का उदाहरण है। इसके अलावा शोधकर्ता उन सभी चरों वेरिएबल्स की सूची तैयार करता है जिनके प्रभाव से डीवी में परिवर्तन हो सकता है, परंतु उसके प्रभाव के अध्ययन में यहाँ उसकी रुचि नहीं होती है, अतः वह इन चरों को विशेष विधियों द्वारा नियंत्रित कर लेता है। ऐसे चरों को संगत चर, रेलिवेंट वेरिएबल या बहिरंग चर, एक्सट्रनस वेरिएबल कहा जाता है। उपयुक्त उदाहरण में प्रयोज सब्जेक्ट्स की आयु, एज, बुद्धि, इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य, हेल्थ आदि ऐसे ही संगत चर के उदाहरण हैं। अतः प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता ऐसे चरों को नियंत्रित कंट्रोल करके रखता है ताकि उनसे डीवी प्रभावित न हो जाए। संगत चरों को नियंत्रित करने की कई विधियाँ हैं जिनमें यादृच्छीकरण, रैंडमाइजेशन तथा मिलान मैचिंग प्रधान है। 3. उचित डिजाइन का चयन, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट डिजाइन। मनोवैज्ञानिक शोध की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था शोध के लिए उचित डिजाइन, अप्रोप्रिएट डिजाइन का चयन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्चेस को सामान्यतः निम्नांकित दो भागों में बांटा जाता है, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तथा अप्रयोगात्मक शोध नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता को स्वतंत्र चरों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर सीधा नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, तथा जिसमें वह उन चरों में जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन भी आसानी से पाता है। प्रयोगशाला प्रयोग शोध लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च तथा क्षेत्र प्रयोग शोध फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दो प्रमुख प्रयोगात्मक शोध है जिनका उपयोग मनोविज्ञान में काफ़ी होता है। अप्रयोगात्मक शोध नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है प्रयोगात्मक शोध के विपरीत होता है। इसमें शोधकर्ता को स्वतंत्र चरों पर सीधा नियंत्रण नहीं रहता है तथा उसमें जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन भी वह नहीं कर पाता है। क्षेत्र अध्ययन फील्ड स्टडीज में शोध, सर्वे रिसर्च आदि अप्रयोगात्मक शोध नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कुछ प्रमुख उदाहरण है। प्रयोगात्मक शोध तथा अप्रयोगात्मक शोध में प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को तुलनात्मक रूप से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसमें सही सही निष्कर्ष, करेक्ट कंक्लूजन पर अधिक विश्वास के साथ इस कारण पहुंचा जाना संभव हो पाता है कि इसमें कारण कॉज तथा प्रभाव इफेक्ट को एक दूसरे से सीधे जोड़ने का प्रयास हो पाता है। इसकी विशेष चर्चा के लिए अध्याय 5 देखें। पैराग्राफ चेंज। जब शोधकर्ता यह निर्णय कर लेता है कि वह प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या अप्रयोगात्मक शोध नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में से किसी तरह का शोध करेगा, तो उसके बाद वह शोध के डिजाइन का चयन करता है। मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च में कई तरह के डिजाइन उपलब्ध हैं जिन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, प्रयोगात्मक डिजाइन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तथा अप्रयोगात्मक डिजाइन नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इन दोनों तरह के डिजाइनों के वर्णन के लिए अध्याय 7 में देखें। पैराग्राफ चेंज। उपयुक्त उदाहरण में मान लिया जाए कि शोधकर्ता एक प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में तब वह एक प्रयोगात्मक डिजाइन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का चयन सिलेक्शन करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वह मध्य प्रयोज्य डिज़ाइन बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन का प्रयोग करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में शोधकर्ता आईवी के प्रत्येक लेवल के लिए एक अलग अलग समूह का चयन यादृच्छिक रैंडमली रूप से करेगा। आईवी प्रशंसा, प्रेस तथा निंदा रिप्रूफ है। इस आईवी में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन तीन स्तरों लेवल्स या अवस्थाओं में बांटकर किया जाता है। प्रशंसा की अवस्था प्रेस कंडीशन, निंदा की अवस्था रिप्रूफ कंडीशन तथा उपेक्षा की अवस्था इग्नोर कंडीशन। मान लिया जाए कि शोधकर्ता के पास करीब करीब एक ही उम्र तथा बुद्धि के 15 छात्र उपलब्ध हैं। वह इन सभी छात्रों को यादृच्छिक रूप से तीन समूहों में बांट देगा और फिर इन तीनों समूहों को यादृच्छिक रूप से रैंडमली तीनों अवस्थाओं कंडीशंस में बांट देगा। इस तरह से एक समूह प्रशंसा की अवस्था में किसी समस्या का समाधान करेगा, दूसरा समूह निंदा की अवस्थाओं में समरूप समस्या आइडेंटिकल प्रॉब्लम का समाधान करेगा तथा तीसरा समूह उपेक्षा की अवस्था में समरूप समस्या आइडेंटिकल प्रॉब्लम का समाधान करेगा। इस तरह से शोधकर्ता द्वारा मध्य प्रयोज्य डिज़ाइन बिटवीन सब्जेक्ट्स डिज़ाइन की शर्तें रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जा पाएंगी। पैराग्राफ चेंज 4, विधियाँ मेथड्स। जब शोधकर्ता उपयुक्त डिज़ाइन अप्रोप्रिएट डिज़ाइन का चयन कर लेता है तो वह एक वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड अपनाता है जिसमें उन सभी चरणों स्टेप्स की व्याख्या होती है जिनसे होकर शोध की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। सामान्यतः इस अवस्था के तीन चरण होते हैं, प्रयोज्य सब्जेक्ट्स उपकरण तथा अन्य वस्तुएं एपरेटस एंड अदर मटीरियल्स तथा क्रियाविधि प्रोसीजर। प्रयोज्य वाले अनुच्छेद में शोधकर्ता प्रयोज्य सब्जेक्ट्स जो उनके अध्ययन में भाग ले रहे हैं कि उम्र, एज, यौन, सेक्स, बुद्धिलब्धि, इंटेलिजेंस कोचेंट तथा अन्य संगत सूचनाओं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस की सूची तैयार करता है। जैसे इस अध्ययन में सभी छात्रों की उम्र 6 से 7 साल के बीच की है तथा करीब करीब उन सबों की बुद्धिलब्धि एक समान है एवं वे सभी एक ही यौन सेक्स के अर्थात पुरुष मेल हैं। उपकरण तथा अन्य वस्तुएं एपरेटस एंड अदर मटेरियल्स वाले अनुच्छेद में शोधकर्ता उन उपकरणों जैसे स्टॉपवॉच, स्मृति पटह, मेमोरी ड्रम, स्पर्शानुभावक, एस्थेसियोमीटर तथा अन्य वस्तुएं जैसे कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्दा, स्क्रीन, स्केल आदि को दर्शाता है। उपयुक्त उदाहरण में शोधकर्ता ने संख्यात्मक क्षमता परीक्षण न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट का प्रयोग किया है क्योंकि छात्रों के तीनों समूहों की संख्यात्मक क्षमता परीक्षण दिया गया था। इस परीक्षण में जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग आदि संबंधी कुछ संख्यात्मक समस्याएं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका समाधान प्रयोज्यों सब्जेक्ट्स को करना होता है। पूर्णविराम पैराग्राफ चेंज। इस अवस्था का सबसे प्रमुख भाग क्रियाविधि प्रोसीजर होती है। इस भाग में शोधकर्ता उन सभी प्रक्रियाओं का वर्णन करता है जिससे होकर शोध या प्रयोग किए गए हैं। जैसे शोधकर्ता यहाँ यह दर्शाता है कि किस तरह से प्रयोज्य सब्जेक्ट्स को विभिन्न समूहों में बांटा गया, किस समूह को कौन सा कार्य दिया गया, किसे नहीं दिया गया, प्रयोज्यों को क्या निर्देशन इंस्ट्रक्शन दिए गए, यदि कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए गए तो वे सभी किस क्रम में दिए गए आदि आदि। उपयुक्त उदाहरण में एक ही कमरे में बैठाकर तीनों समूहों को बारी बारी से संख्यात्मक क्षमता परीक्षण न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट दिया जाएगा। जब पहला समूह संख्यात्मक समस्याओं का समाधान कर रहा होगा तो उस समूह की प्रगति प्रोग्रेस की काफ़ी प्रशंसा की जाएगी। दूसरे समूह द्वारा समस्याओं का समाधान करते समय प्रगति की निंदा की जाएगी तथा इस पर तरह तरह के व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की जाएंगी। तीसरे समूह द्वारा समस्या समाधान करते समय उसकी प्रगति पर शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी आदि नहीं की जाएगी तथा उनके द्वारा किसी तरह की प्रशंसा भी नहीं की जाएगी। इस तरह से तीसरा समूह उपेक्षित इग्नोर्ड ग्रुप होगा। इस परीक्षण के सभी एकांशों का उत्तर देने के लिए कुल 30-30 मिनट का समय प्रत्येक समूह को दिया जाएगा। कुंड विराम पैराग्राफ चेंज। 5 परिणाम विश्लेषण एनालाइजिंग द रिजल्ट्स। मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च का एक महत्वपूर्ण अवस्था परिणाम विश्लेषण एनालाइजिंग ऑफ रिजल्ट्स का होता है। जब शोधकर्ता रिसर्चर अपने प्रयोग एक्सपेरिमेंट या शोध रिसर्च के आधार पर एक परिणाम रिजल्ट तैयार कर लेता है तो उसके बाद वह उस परिणाम रिजल्ट का विश्लेषण एनालिसिस शुरू कर देता है। परिणाम का विश्लेषण करने के लिए शोधकर्ता कुछ सांख्यिकीय प्रविधियों स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का सहारा लेता है। इन प्रविधियों में माध्य मीन मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन अनुपात टी अनुपात टी रेशियो एफ अनुपात एफ रेशियो तथा कोई वर्ग माफ कीजिए काई वर्ग काई स्क्वायर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रचलित हैं। इन प्रविधियों द्वारा परिणाम विश्लेषण करने का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डीवी पर कितना पड़ा है तथा किस दशा में पड़ा है। उपयुक्त शोध के उदाहरण में तीन समूह थे, प्रशंसित समूह प्रेस्ड ग्रुप, निंदित समूह रिप्रूव्ड ग्रुप तथा उपेक्षित समूह इग्नोर्ड ग्रुप। तीनों समूहों द्वारा संख्यात्मक क्षमता परीक्षण पर अर्जित प्राप्तांक स्कोर के आधार पर मान लिया जाए कि माध्य मीन मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन तथा टी अनुपात टी रेशियो ज्ञात किया जाता है। यहाँ प्राप्तांक का अर्थ प्रयोज्यों द्वारा सही उत्तर देने पर मिलने वाले अंकों के जोड़ से है। यदि प्रशंसित समूह प्रेस्ड ग्रुप का माध्य सबसे अधिक, निंदित समूह का माध्य सबसे कम तथा उपेक्षित समूह का माध्य सबसे कम आता है तथा माध्यों का यह अंतर मीन डिफरेंस सार्थक सिग्निफिकेंट साबित होता है अर्थात टी अनुपात सार्थक साबित होता है तो इससे स्पष्ट रूप से शोधकर्ता यह समझ जाएगा कि उसके अध्ययन में 4 माफ कीजिए आईवी का प्रभाव डीवी पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। पूर्णविराम पैराग्राफ चेंज। 6 निष्कर्ष निकालना ड्रॉइंग कंक्लूजन। मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च का अंतिम चरण परिणाम विश्लेषण करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। सचमुच में इसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए शोधकर्ता ने शोध प्रारंभ किया था। इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर शोधकर्ता शोध की समस्याओं के बारे में विशेष कथन स्टेटमेंट तैयार करता है। उपयुक्त उदाहरण में चूंकि प्रशंसित समूह प्रेस्ड ग्रुप का माध्यम मीन निंदित समूह के माध्यम से ऊंचा पाया गया है और साथ ही साथ माध्य का अंतर सार्थक सिग्निफिकेंट भी होता पाया गया है क्योंकि टी अनुपात सार्थक बतलाया गया है। शोधकर्ता इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रशंसा से समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है तथा निंदा से घटती है। पूर्णविराम पैराग्राफ चेंज। किसी भी मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक शोध की यही 6 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं से गुजरने पर मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च की वैधता वैलिडिटी तथा निर्भरता डिपेंडेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। प्रोग्राम पैराग्राफ चेंज। शोध रिपोर्ट लिखना राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। किसी समस्या प्रॉब्लम पर शोध रिसर्च करके उससे एक निश्चित निष्कर्ष निकाल लेना ही मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य नहीं होता बल्कि उसे एक वैज्ञानिक ढंग से रिपोर्ट करना भी उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इस रिपोर्ट का मूल उद्देश्य अन्य लोगों को यह बतलाना होता है कि शोधकर्ता द्वारा अमुक समस्या का समाधान किस ढंग से किया गया है। इससे वैज्ञानिक ज्ञान साइंटिफिक नॉलेज का प्रसार होता है। एक अच्छी रिपोर्ट गुड रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा स्पष्ट क्लैरिटी यथार्थता एक्यूरेसी तथा संक्षिप्तता कंसाइसनेस 3 प्रमुख गुण होते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च की रिपोर्ट को वैज्ञानिक ढंग से उपस्थित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विशेषकर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक प्रारूप या फॉर्म तैयार किया है जिसे प्रकाशन मैनुअल पब्लिकेशंस मैनुअल कहा जाता है। आजकल मनोवैज्ञानिक शोधों को सभी मानक शोध जनरल स्टैंडर्ड रिसर्च जनरल में इसी प्रारूप फॉर्म में प्रकाशित किया जा रहा है। भारतीय मनोवैज्ञानिक भी इसी प्रारूप का मानक स्टैंडर्ड मानकर अपना शोध इसी ढंग से प्रकाशित कर रहे हैं। प्रारूप फॉर्म को ध्यान में रखते हुए मनोवैज्ञानिक शोध साइकोलॉजिकल रिसर्च को निम्नांकित अनुच्छेदों सेक्शंस में बांट कर उपस्थित कर सकते हैं। पूर्णविराम पैराग्राफ 3 एक शीर्षक पृष्ठ टाइटल पेज मनोवैज्ञानिक शोध का शीर्षक स्पष्टतः एक पृष्ठ पर अलग से लिखा जाना चाहिए क्योंकि शेष अपने आप में एक तरह का अध्ययन स्टडी या अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन होता है। इसलिए शोध लिखने में अध्ययन या अनुसंधान शब्द का प्रयोग यदि नहीं होता तो हो तो उत्तम है। ऐसे जैसे स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेज एंड रिप्रूफ अपॉन द प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर न लिखकर रिलेटिव इफेक्ट ऑफ प्रेज एंड रिप्रूफ अपॉन द प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर शीर्षक रूप में दिया जाए तो यह उत्तम होगा। स्पष्ट है कि शीर्षक को ऐसा होना चाहिए कि शोध में सम्मिलित किए गए आईवी प्रेस तथा रिप्रूव एवं डीवी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर दोनों का ही उल्लेख हो। शीर्षक एक अलग पृष्ठ पर होना चाहिए तथा शीर्षक के नीचे शोधकर्ता रिसर्चर का नाम तथा उसका संस्थागत संबंध इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन अर्थात वे किस विश्वविद्यालय स्थान से संबंधित है का उल्लेख होना चाहिए। सतत शीर्षक रनिंग हेड मुख्य शीर्षक का संक्षिप्त रूप होता है जो शोध पत्रिकाओं के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर छपा होता है। इससे शोध पत्रिका रिसर्च आर्टिकल की पहचान करने में सुविधा होती है। शीर्षक पृष्ठ पर सतत शीर्षक जिसकी लंबाई अधिकतम 50 अक्षरों की हो सकती है ऊपर की दाईं ओर सभी ब्लॉक अक्षरों ब्लॉक लेटर्स में लिखे जाते हैं। जैसे उक्त उदाहरण में जिसमें शोध समस्या है डबल इन्वर्टेड कॉमा रिलेटिव इफेक्ट ऑफ प्रेज एंड रिप्रूव अपॉन द प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड के लिए सतत शीर्षक प्रेज एंड रिप्रूव हो सकता है। शीर्षक पृष्ठ पर सबसे नीचे में अभारोक्ति एक्नॉलेजमेंट यदि कोई हो तो फुटनोट के रूप में बिना किसी संख्या के हो लिखा जाता है। अभारोक्ति में अध्ययन या शोध के आधारों का जैसे डॉक्टरीय शोध प्रबंध डॉक्टरल डिसर्टेशन आर्थिक समर्थन शोध को पूरा करने में जिन स्रोतों की सहायता प्राप्त हुई है का नाम आदि का उल्लेख संक्षेप में होता है। शीर्षक पृष्ठ के एक नमूने को नीचे की प्रक्रिया में दिखलाया गया है। 2 एब्स्ट्रैक्ट किए गए शोध के प्रमुख बिंदुओं का एक सारांश समरी होता है। एब्स्ट्रैक्ट को सामान्यतः 12 से 15 पंक्तियां यानी 100 से 120 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में शोध के उद्देश्य को एक या दो पंक्ति में तथा निष्कर्ष कार्यविधि को 5 से 6 पंक्ति में परिणाम रिजल्ट को 2 से 3 पंक्ति में तथा निष्कर्ष कंक्लूजन को एक पंक्ति में लिखना चाहिए। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के प्रकाशन मैनुअल पब्लिकेशन मैनुअल के अनुसार एब्स्ट्रैक्ट को संक्षिप्त यथार्थ तेजी से समझने लायक तथा ज्ञानप्रद होना चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 3 आमुख इंट्रोडक्शन आमुख अनुच्छेद को शोधकर्ता एक अलग पृष्ठ पर लिखता है। इस अनुच्छेद का कोई अलग से शीर्षक नहीं होता। आमुख इंट्रोडक्शन में शोधकर्ता मूल रूप से दो बातों पर प्रकाश डालता है शोध समस्या रिसर्च प्रॉब्लम क्या है तथा उसकी पृष्ठभूमि क्या है एवं उसके अध्ययन या शोध का उद्देश्य पर्पस क्या है। शोध समस्या की पृष्ठभूमि तैयार करने के ख्याल से शोधकर्ता संबंधित अध्ययनों की समीक्षा रिव्यू करता है तथा ऐसे प्रमुख अध्ययनों का उल्लेख भी करता है। अध्ययन या शोध के उद्देश्य को शोधकर्ता प्राकल्पना हाइपोथेसिस के रूप में उल्लेख करता है। शोध में एक प्राकल्पना हाइपोथेसिस हो सकती है या एक से अधिक प्राकल्पना भी हो सकती है। यदि शोध में एक आईवी है तो एक प्राकल्पना हाइपोथेसिस होगी और यदि एक से अधिक आईवी है तो उसमें एक से अधिक प्रकल्पनाओं के रूप में शोध के उद्देश्य पर्पस को लिखा जाता है। चार, विधि मेथड। विधि अनुच्छेद मेथड सेक्शन को रिपोर्ट का मुख्य अंश माना गया है। इस अनुच्छेद में शोधकर्ता विशेष रूप से उन तरीकों का वर्णन करता है जिनके सहारे प्रयोग या शोध किए गए हैं। सामान्यतः विधि अनुच्छेद मेथड सेक्शन को तीन भागों में बांटकर रिपोर्ट को तैयार किया जाता है जिनका वर्णन निम्नांकित है। पैराग्राफ चेंज अ प्रयोज सब्जेक्ट। इसमें शोधकर्ता इस बात का उल्लेख करता है कि प्रयोग या शोध में कितने प्रयोज्य थे, उनका चयन सिलेक्शन यादृच्छिक रूप से रैंडमली किया गया था या स्वेच्छाचारी ढंग से किया गया था या किसी अन्य तरीके से किया गया था, क्या वे कॉलेज के विद्यार्थी थे, क्या वे अस्पताल के डॉक्टर थे या क्या वे किसी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी थे आदि आदि। पैराग्राफ चेंज व उपकरण एपरेटिस। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उन सभी उपकरणों या प्रश्नावली क्वेश्चनेयर का वर्णन होता है जिनका उपयोग शोध में किया गया है। कभी कभी जब किसी जटिल मशीनरी का या उपकरण उपयोग किया जा होता है तो उसका चित्र भी बना दिया जाता है। सौ कार्यविधि प्रोसीजर। इस उप अनुच्छेद को कैसे किया गया उप अनुच्छेद अंडरब्रैकेट हाउस सब सेक्शंस भी कहा जाता है। इस उप अनुच्छेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि आईवी में किस प्रकार जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन किया गया तथा किस तरह से डीवी में होने वाले परिवर्तनों को रिकॉर्ड किया गया। कार्यविधि प्रोसीजर उप अनुच्छेद में मूल रूप से तीन बातों पर बल डाला जाता है। शोध में किस प्रकार के डिज़ाइन का प्रयोग किया गया है, यदि मानव प्राणी को प्रयोग सब्जेक्ट्स के रूप में प्रयोग किया गया है तो उन्हें किस तरह निर्देश इंस्ट्रक्शन दिया गया था तथा प्रयोज्य सब्जेक्ट्स के व्यवहारों को किस प्रकार मापन किया गया था आदि आदि। पूर्णविराम पैराग्राफ चेंज। कभी कभी यह देखा गया है कि शोध रिसर्च का प्रयोग एक्सपेरिमेंट में एक जटिल डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में विधि मेथड अनुच्छेद में डिज़ाइन उप अनुच्छेद अलग से जोड़ दिया गया जाता है जिसमें व्यवहारिक डिज़ाइन का विस्तृत वर्णन होता है। ऐसी परिस्थिति में विधि अनुच्छेद में तीन उप अनुच्छेदों की जगह पर चार उप अनुच्छेद हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज पाँच परिणाम रिजल्ट्स। इस अनुच्छेद में शोधकर्ता यह लिखता है कि प्रयोग या शोध से किस ढंग के आंकड़े डाटा प्राप्त हुए। ऐसा करने में वह वर्णनात्मक सांख्यिकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अनुमानिक सांख्यिकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स दोनों का सहारा लेता है। वर्णनात्मक सांख्यिकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैसे माध्य मीन मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन द्वारा आंकड़ों डेटा का एक सारांश समरी तैयार कर लिया जाता है तथा अनुमानिक सांख्यिकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स द्वारा बाद में शोधकर्ता को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलती है। अनुमानिक सांख्यिकी के प्रयोग से पाठक यह भी निश्चित कर पाते हैं कि प्राप्त परिणाम में विश्वास किया जा सकता है या नहीं। परिणाम रिजल्ट्स के आंकड़ों डेटा को ग्राफ चित्र फिगर तथा टेबल के रूप में भी अभिव्यक्त किया जाता है। परिणाम रिजल्ट्स लिखते समय सावधानी यह बरतनी चाहिए कि इस अनुच्छेद में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किसी प्रकार के अनुमान इन्फ्रेंस तथा निष्कर्ष कंक्लूजन का उल्लेख नहीं होना चाहिए। पूर्णविराम पैराग्राफ चेंज छः विवेचना डिस्कशन। विवेचना डिस्कशन अनुच्छेद को शोध रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट का सबसे सृजनात्मक भाग क्रिएटिव पार्ट माना गया है। इस अनुच्छेद में प्रयोग एक्सपेरिमेंट या शोध से प्राप्त आंकड़ों डेटा की व्याख्या की जाती है। उससे कुछ निश्चित अनुमान इन्फ्रेंसेस निकाले जाते हैं एवं इस अध्ययन का संबंध अन्य अध्ययनों से जोड़ा जाता है। वर्तमान शोध के परिणाम पहले के शोधों के परिणामों से भी मिलते जुलते हो सकते हैं या उन परिणामों से भिन्न भी हो सकते हैं। शोध परिणाम के द्वारा पूर्व उल्लेखित प्रकल्पनाओं हाइपोथेसिस की पुष्टि हो रही है या नहीं उसका भी उल्लेख शोधकर्ता को यहाँ करना होता है। यदि पुष्टि नहीं हो रही है या उससे के द्वारा प्राप्त परिणाम रिजल्ट उसी क्षेत्र में किए गए अन्य शोधों एवं प्रयोग के परिणामों से काफ़ी अधिक भिन्न है तो शोधकर्ता यह कुछ उन कारणों पर भी प्रकाश डालता है जिनसे ऐसा हुआ ताकि संबंधित क्षेत्र में भविष्य में किए जाने वाले शोध या प्रयोग इससे लाभान्वित हो सके। विवेचना डिस्कशन वाले अनुच्छेद में ही शोधकर्ता यह भी उल्लेख कर पाता है कि उनके द्वारा प्राप्त परिणाम या सामान्यीकरण जनरलाइजेशन पशुओं के लिए भी यदि मनुष्य पर अध्ययन किया गया है या मनुष्य के लिए भी यदि पशु पर अध्ययन किया गया है किया जा सकता है या नहीं। यहाँ शोधकर्ता अपने अध्ययन की कुछ परिसीमाओं लिमिटेशंस का भी खुलकर वर्णन करता है। वह उन चरों वेरिएबल्स का भी उल्लेख करता है जो अनियंत्रित रह गए थे तथा जो डिजाइन एवं कार्यविधि प्रोसीजर में संभावित परिवर्तनों की ओर भी संकेत देते हैं। पैराग्राफ चेंज। इन अनुच्छेदों में शोधकर्ता संक्षेप में समस्या प्रॉब्लम परिणाम रिजल्ट तथा प्राप्त निष्कर्ष का उल्लेख करता है। यहाँ शोधकर्ता इन सभी तथ्यों का एक संक्षिप्त एवं संगत कोहेरेंट प्रारूप तैयार करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य पाठक को कम समय में यह अवगत कराना होता है कि शोध किस विषय से संबंधित है तथा उसके प्राप्त परिणाम एवं निष्कर्ष क्या हैं। साथ संदर्भ रेफरेंस। इस अनुच्छेद में शोधकर्ता उन सभी अध्ययनों स्टडीज या लेखकों ऑथर्स को अकारादि क्रम से अल्फाबेटिकली लिखता है जो उसके अध्ययन में शामिल किए गए हैं। संदर्भ रेफरेंस का संक्षिप्त उल्लेख रिपोर्ट के मूल टेक्स्ट में होता है तथा उसका विस्तृत उल्लेख रिपोर्ट के अंत में तैयार किए गए स्वतंत्र अनुच्छेद में होता है। रिपोर्ट के मूल टेक्स्ट में अध्ययन का संदर्भ लिखने में अध्ययन के लेखक का उपनाम सरनेम तथा ब्रैकेट में उस अध्ययन का प्रकाशित होने का वर्ष दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि एक शोध पत्र ब्रैकेट रिसर्च आर्टिकल जिसका शीर्षक कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ जॉब एंजाइटी स्केल है एक ही श्रीवास्तव द्वारा इंडियन जनरल को ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस में 1977 में प्रकाशित हुआ और जिसे किसी शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में सम्मिलित किया है। इसका संदर्भ रेफरेंस शोध पत्र के मूल टेक्स्ट में लेखक के उपनाम तथा प्रकाशन के वर्ष के साथ इस प्रकार दिया जाएगा श्रीवास्तवा 1977। ऐसे भी संभव है कि मूल टेक्स्ट में एक ही श्रीवास्तव के दो या तीन अध्ययनों जो अलग अलग वर्षों में प्रकाशित हुए हैं को सम्मिलित किया गया हो। ऐसी परिस्थिति में हम ब्रैकेट में प्रकाशन के वर्ष को एक क्रम में लिखकर रखकर प्रस्तुत करेंगे जैसे श्रीवास्तवा 1977 1978 1980 1985। पैराग्राफ चेंज। कभी कभी शोधकर्ता किसी ऐसे अध्ययन को अपने शोध के मूल टेक्स्ट में सम्मिलित कर लेता है जिसे दो से अधिक प्रयोगकर्ता मिलकर पूरा किए हुए होते हैं। ऐसी परिस्थिति में वरिष्ठ प्रयोगकर्ता सीनियर ऑथर के उपनाम सरनेम के बाद ETAL का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि कोई अध्ययन BDLN के सिन्हा ए के सिन्हा तीन व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया है जिसका प्रकाशन 1987 इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में हुआ है। ऐसे अध्ययन को शोधकर्ता अपने से के मूल टेक्स्ट में इस तरह उल्लेख करेगा DETAL 1987। परंतु जब उपरोक्त अध्ययनों का उल्लेख शोध के मूल टेक्स्ट में न कर संदर्भ रेफरेंस वाले अनुच्छेद में किया जाएगा तो उसे निम्नांकित ढंग से लिखा जाएगा श्रीवास्तवा ए के 1977, कंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ जॉब एंजाइटी स्केल इंडियन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस 13-37-42 DB सिन्हा LN के एंड सिंह ए के 1987 पर्सनैलिटी कोरिलेट प्रेजुडिस जनरल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्चेस 30-125 से 30 पुस्तक। स्पष्ट है कि शोध रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट के अंत में जो संदर्भ रेफरेंस लिखा गया है उसमें सभी लेखकों का संक्षिप्त नाम, शोध का शीर्षक, जर्नल का नाम, जर्नल की ग्रंथ संख्या, वॉल्यूम नंबर तथा पृष्ठ संख्या का भी उल्लेख किया जाता है। जर्नल या पुस्तक का नाम तिरछे अक्षरों इटैलिक लेटर्स में प्रकाशित किया जाता है। 8 परिशिष्ट अपेंडिक्स। परिशिष्ट में शोधकर्ता उन सूचनाओं को रखता है जिसे शोध के मुख्य अंश में रखना अनुपस्थापित होता है। प्रत्येक परिशिष्ट की शुरुआत एक नए पृष्ठ पर की जाती है तथा जिसने शोध में प्रयुक्त परीक्षणों, टेस्ट, विस्तृत सांख्यिकी परिकलन, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन तथा कंप्यूटर कार्य आदि को रखा जाता है। छात्रों की सुविधा के लिए अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन 1983 के प्रकाशन मैनुअल, पब्लिकेशन मैनुअल के उपयुक्त चरणों स्टेजेस को निम्नांकित तालिका में एक जगह करके दिखलाया जा रहा है। एक शीर्षक पृष्ठ टाइटल पेज, शीर्षक टाइटल, ब लेखक का नाम तथा संबंध ऑथर्स नेम एंड एफिलिएशन, स सतत शीर्षक रनिंग हेड, अभारोक्ति यदि हो, एक्नॉलेजमेंट इफ एनी, 2 एब्स्ट्रैक्ट, 3 आमुख इंट्रोडक्शन, अ समस्या का उल्लेख स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ब साहित्य की पृष्ठभूमि समीक्षा बैकग्राउंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, स उद्देश्य एवं प्रकल्पना पर्पस एंड हाइपोथेसिस, 4 विधि मेथड, अ प्रयोज्य सब्जेक्ट्स, ब उपकरण यदि हो एपरेटस इफ एनी, स डिजाइन यदि शोध में कोई जटिल डिजाइन का समावेश किया गया, डिजाइन इफ अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, द कार्यविधि प्रोसीजर, 5 परिणाम रिजल्ट, अ टेबल एवं चित्र टेबल एंड फिगर्स, ब सांख्यिकीय प्रस्तुति स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन, 6 विवेचना डिस्कशन, अ प्रकल्पना का समर्थन या असमर्थन सपोर्ट और नॉन सपोर्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ब व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक आशय प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल इम्प्लीकेशन, स निष्कर्ष कंक्लूजन, 7 संदर्भ रेफरेंस, 8 परिशिष्ट अपेंडिक्स यदि हो। अस्पष्ट हुआ कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा शोध रिपोर्ट लिखने का एक उत्तम एवं मानक स्टैंडर्ड प्रारूप तैयार किया गया है का अनुसरण संसार के लगभग सभी देशों के मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाता है।